पृष्ठ संख्या 214। वैसे कुकुरमुत्ता की बाह्य संरचना से इस बात का भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि वह तथा कथित प्रगतिशील सिद्धांतों से प्रभावित होकर रचा गया काव्य है, लेकिन सिर्फ बाह्य संरचना से ही, क्योंकि उसे गुलाब के प्रतिपक्ष में रखकर देखा गया है। दूसरी ओर नवाब की लड़की और मालिन की लड़की बहार और गोली को एक दूसरे के आमने सामने रखा गया है। वह संरचना की यह परिकल्पना सीधे पूंजीपति बनाम सर्वहारा के उस वर्ग सिद्धांत की याद दिलाती है जो सारे प्रगतिशील काव्य सिद्धांत का आधार है। लेकिन इतने से ही कुकुरमुत्ता को इन बने बनाए सांचों में डालकर उसके अध्ययन से मुक्त हो जाना एक बहुत बड़ी गैर ईमानदारी है, क्योंकि इस तरह का प्रतिपक्ष तो निराला अपनी पहले की कविताओं में भी रखते रहे हैं। करती बार बार प्रहार सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। यहाँ पत्थरों पर हथौड़े की चोट के तुरंत बाद दूसरी पंक्ति में सामने की तरुमालिका पेड़ या झाड़ झंखाड़ नहीं, अट्टालिका और प्राकार की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। अतः सिर्फ बाह्य संरचना या दो विरोधी संस्कारों और स्थितियों की वस्तुओं या आदमियों को आमने सामने रख देने से ही कुकुरमुत्ता के ऊपर मार्क्सवादी काव्य की नाम पट्टी चिपका देना अनुचित होगा। निश्चय ही स्थितियों का यह तुलनात्मक अध्ययन कवि की सामान्य की उसी प्रतिष्ठा या उपेक्षित के उसी उन्नयन को रूप और आकार देने की सुविधा के लिए किया गया है। ध्यान देने योग्य है कि कविता के पहले खंड में कुकुरमुत्ते के जवाब में गुलाब कुछ भी नहीं कहता। यह अत्यंत स्वाभाविक है। यह ठंडा व्यवहार, यह व्यक्तित्व और आभिजात्य का दुर्गम अहम और यह अनुत्तेजना, उसकी जगह कुकुरमुत्ते की ठेठ देसी अकड़ और बड़बोली देखने लायक है। यह बड़बोली उसकी निश्चलता, अकृत्रिमता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक टूटती हुई भारतीय पतनशील व्यवस्था के साथ ही, जो वास्तव में कृत्रिम और आरोपित है, क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था कभी भी आभिजात्य प्रेरित ना होकर सामान्य प्रेरित रही है। निराला सामान्य के महत्व, उसके यथार्थ और उसकी उपयोगिता को ही प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। मेरा कुल कहना यह है कि सामान्य की इस प्रतिष्ठा में सिद्धांत का उतना योग नहीं जितना निराला के व्यक्तित्व की सांसारिक निष्ठा का योग है। केवल कुछ पंक्तियों, पृष्ठ संख्या 215। खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, के आधार पर सिद्धांतारोपण खतरनाक है। यहाँ पर कैपिटलिस्ट के प्रयोग में शब्द व्यवहार पर मजाक की ध्वनि अधिक है, गुस्से या विनाश या घृणा की ध्वनि कम। इसी तरह खून चूसने वाले को भी मात्र अशिष्ट संबोधन दिया गया है। कुकुरमुत्ते की तरफ से इतना शालीन संबोधन ही इस पंक्ति के सिद्धांतीकरण का जैसे विरोध करता है। सिद्धांत के अनुसार और व्यवहारतः मनोवैज्ञानिक रूप में भी अपना खून पीने वाले को मात्र अशिष्ट कहकर डाल पर इतराने के लिए कोई नहीं छोड़ देगा। यहाँ पर फिर कुकुरमुत्ते के मुँह से भारतीय पैसियों समाज व्यवस्था के अंदर सदियों से पला पुसा वही व्यक्ति बोलता है जो प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं रखता, जो अपनी पैसिविटी में अपने ऊपर किए गए सारे अत्याचार और सारी क्रूरता को पानी की लहर की तरह अपने ऊपर से गुजर जाने देता है और फिर स्वयं धुलकर निखर आता है। क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था में आभिजात्य का हल्ला सिर्फ हल्ले की तरह ही आता है और चला जाता है। भारतीय समाज व्यवस्था का निर्माण सामान्य असाधारण की अंतर्मुखता और संकोच से हुआ है। वह साधारण कभी कभी अपने ठेठ खुरदरे बड़बोलेपन के बावजूद निश्चित रूप से प्रतिशोधहीन, उपयोगी, पैसिव और संकोचशील है। इसीलिए भारतीय समाज व्यवस्था बुनियादी तौर पर क्रांतदर्शी नहीं है। क्रांति यहाँ के आदमी की घुट्टी में नहीं है। यहाँ का आदमी बहुत ही ठस व्यवस्था कामी और अंतर्मुख है। एक गुण ब्रैकेट में अथवा अवगुण, एक अनपढ़ और निरे देहाती गब्दू गंवार किस्म के आदमी के व्यवहार से लेकर बड़े बड़े विद्वानों, राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों तक में समान रूप से लक्ष्य किए जा सकते हैं। सिर्फ व्यवहार में प्रकट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इस तरह कुकुरमुत्ता में जो वर्ग समाज का ऊपरी और भ्रम में डालने वाला आधार मिलता है, उसकी तह में जाकर देखें तो कुकुरमुत्ता की बनावट और संरचना का आधार घृणा नहीं है, सिर्फ एक पैसिव व्यंग्य है। कुकुरमुत्ता की सारी बड़बोली में कहीं भी क्रांति की गंध नहीं है, बल्कि अपनी परंपरागत महत्ता, मूल्यवत्ता और निरंतरता सिद्ध करने में है। नाम बद रूप हो जाने के बावजूद अपनी उपयोगिता और सच्चाई का ज्ञान है। कुकुरमुत्ता के दूसरे खंड में भी बहार और गोली को आमने सामने रखकर देखने में किसी भी घृणा का प्रतिपादन नहीं है, बल्कि एक स्नेह भरा अपनाव है, और उनके माध्यम से कुकुरमुत्ते की उपयोगिता का प्रतिपादन भी है। पूरी कविता के व्यंग्य में कहीं भी घृणा की आवेश जर्जरता या उसका उफान नहीं है, बल्कि अपनी सार्थकता के प्रति घोर आत्मविश्वास का प्रकाशन है। पृष्ठ संख्या 216 और अंत में कविता के अंत में भारतीय जन समाज के बारे में उस सांसारिक परंपरागत सच्चाई का प्रतिपादन भी है। नवाब द्वारा कुकुरमुत्ते की मांग किए जाने पर माली का यह कहना कि कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता, उस सच्चाई को प्रमाणित करता है। साधारण या सामान्य को पैदा नहीं किया जा सकता, वह अपने अस्तित्व की सार्थकता और ऊपरी नगण्यता में भी स्वतंत्र है, स्वयंभू है। इस तरह निराला कुकुरमुत्ता में या अपने सारे काव्य में कहीं भी एक क्रांतिदर्शी या तथाकथित प्रगतिशील कवि नहीं है, एक सत्यदृष्टा कवि है। यह सत्यदृष्टा होना ही कुकुरमुत्ता में एक निरा प्रचारवादी अथवा आरोपित सिद्धांतों का पुनर्निर्माण करने वाले अर्थात कविता की जगह कविता का मिथ्याभास पैदा करने वाले कवि के रूप में उपस्थित होने से निराला को बचाता है। यहीं से निराला एक सार्थक और सजग और यथार्थ अनुभूति संपन्न स्वतंत्र चेता कवि के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। अपनी इस सार्थक, सजग एवं यथार्थ की अनुभव संपन्नता में से कुकुरमुत्ता की रचना करके निराला हमारे सामने कौन सा सत्य कविता के रूप में रखना चाहते हैं? यह प्रश्न निश्चय ही मेरे विचार प्रतिपादन के दौरान सजग पाठक अनुभव करेगा। इसका उत्तर भी वही पैसिव, अंतर्मुख एवं ठस समाज व्यवस्था है, जिसका निर्माणकर्ता, जिसकी सिद्धि और जिसका साध्य वही साधारण भारतीय मनुष्य है। निराला उसी का प्रतिपादन करना चाहते हैं, उसी को सिद्ध करना चाहते हैं और उसी की मूल्यवत्ता को खोजना चाहते हैं। इस तरह कुकुरमुत्ता का प्रतिपाद्य भी वही उपेक्षित किंतु एकमात्र मूल्यवान भारतीय जनसाधारण है। वह बदरूप हो सकता है, लेकिन फिर भी वह गंदे में बुत्ता देता हुआ एक सिंहासन छत्र की तरह अपनी आंतरिक निर्मलता, श्वेतता में संपन्न और निश्चिंत है। सामान्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए निराला कुकुरमुत्ता में आकर सारी काव्य प्रणाली, शिल्प संगठन और भाषिक संरचना की नए सिरे से छानबीन करते हैं। यह छानबीन और खोज और नया संगठन लगभग पुराने के संपूर्ण अस्वीकार, यह उसकी परित्याग से उपजा है। निराला ने यह समझ लिया है कि सामान्य की इस प्रतिष्ठा में अभिजात भाषा, शिल्प सौंदर्य, अंतःगठन और गहन गीतात्मकता काम नहीं देगी, इसीलिए कविता के लगभग सभी अभिजात अवशेषों से यहाँ छुटकारा पाने की अद्भुत कोशिश दिखाई देती है। लंबी कविताएं निराला ने और भी लिखी हैं, राम की शक्ति पूजा, यमुना के प्रति शिवाजी का पत्र और तुलसीदास, लेकिन कहीं भी इनमें से किसी भी कविता में निराला ने अपनी स्वार्जित शब्द शक्ति और निजी भाषिक संरचना को पृष्ठ संख्या 217 आमूल बदलने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उल्टे उन्होंने शब्द के अभिजात संस्कार को अपने गहन अध्ययन और अद्भुत कल्पना शक्ति से और अधिक समृद्ध किया है। राम की शक्ति पूजा, शब्द वैभव, चित्रात्मक सृजना और राम के अर्ध ऐतिहासिक मिथ को अपने निजत्व के संदर्भ में नियोजित किया गया एक अद्भुत संपन्न काव्य है। यमुना के प्रति का संपूर्ण शब्दबंध और कल्पना विलास छायावादी शब्द गरिमा का श्रेष्ठतम उदाहरण है। शिवाजी का पत्र छंद तोड़ने के बावजूद अपने संस्कारों और समादरता में तथा शब्द संयोजन के लिहाज से संपूर्णतः एक सांस्कारिक और अभिजात गौरवगाथा की कविता है और बहुत अर्थों में तुलसीदास भी। लेकिन कुकुरमुत्ता अपने संपूर्ण बंध में इन सबसे पृथक है। कुकुरमुत्ता का गठन और उसकी वर्णात्मकता में किसी कथा का आग्रह नहीं है। आरंभ के कुछ छंदों के बाद पहले खंड में भी कहानी नामक कोई चीज़ नहीं है। यही हाल दूसरे खंड का भी है, बल्कि यों कहें कि कथा यहाँ अभिप्रेत नहीं है। दोनों खंडों के दो प्रतीक एक ही अर्थ को सिद्ध करने के लिए लाए गए हैं। पहले खंड में संवाद का नाम भर है, पूरी शैली एकालाप की शैली है। वहाँ विरोध या उत्तर या तर्क की काट नहीं है। कुकुरमुत्ता स्वच्छंद है किसी भी सीमा तक जाने को। वह कविता संस्कृत, इतिहास, समाज, भूगोल सब कुछ अपने में समेटता चलता है। उसकी सार्थकता अतीत, वर्तमान और यहाँ तक कि भविष्य की मूलवत्ता में भी निहित है। दूसरे खंड में अपेक्षाकृत वर्णनात्मकता अधिक है। इस प्रकार संपूर्ण कविता कुकुरमुत्ते को केंद्र में रखकर लिखी गई है। शेष सारे पात्र और सारी स्थितियाँ उसके प्रभा मंडल के इर्द गिर्द घूमती हैं और उसके अस्तित्व की सार्थकता को सिद्ध करती हैं। यहाँ तक कि नवाब भी या गुलाब का फूल भी या बहार अथवा गोली या चढ़ी आँख कानी भी। यह निश्चय ही कि सारी कविता की परिकल्पना व्यंग्य के धरातल पर हुई है और कई दृष्टियों से कुकुरमुत्ता एक सफलतम व्यंग्य काव्य है। किंतु मात्र इतना ही नहीं है, व्यंग्य के साथ ही विनोद और हास्य का भी अच्छा खासा पुट जगह जगह मिलता है। और यह व्यंग्य भी कहीं एक जगह या एक स्थिति, पात्र, घटना या कारण की ओर संधानित नहीं है। जैसा कि निराला के कई अधकचरे आलोचकों ने कहा है, इस व्यंग्य का निशाना सिर्फ गुलाब ही है, ना ही सिर्फ नवाब या उनकी लड़की बहार। आभिजात्य पर कुकुरमुत्ता का व्यंग्य सिर्फ पूरी कविता के विराट व्यंग्य का एक अंश मात्र है। यह सच है कि टारगेट यह आभिजात्य ही है, लेकिन अपनी सार्थकता सिद्धि के दौरान कुकुरमुत्ता किसी को भी नहीं छोड़ता। पृष्ठ संख्या 218, और जिनको भी यह नहीं छोड़ता उन पर भी किया गया व्यंग्य कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुकुरमुत्ते के छत्र और डंठल के आकार को लेकर निराला ने उपमाओं की जो प्रत्यक्ष झड़ी लगा दी है, उसमें जगह जगह से सर्वथा अप्रत्याशित व्यंग्य उभरता है। यह कविता के अंतिम उद्देश्य ब्रैकेट में अभिजात पर व्यंग्य और साधारण की सार्थकता ब्रैकेट बंद से पृथक पंक्तियों के बीच से कई कई स्वतंत्र व्यंग्यों की सृष्टि करता है। चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र भारत का वही कैसा तना। आज का फिर रूप पैराशूट ले, उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी। और भी लंबी कहानी सामने ला मुझे कर बेड़ा, देख कैड़ा तीर से खींचा धनुष मैं राम का, काम का पड़ा कंधे पर हूँ हल बलराम का। मैं ही डाणी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तोलती गल्ला। सरस्ता में फ्राड, कैपिटल में जैसे लेनिन ग्राड, सच समझ जैसे रकीब, लेखकों में लंठ जैसे खुश नसीब। इनमें से हर छंद अपने आप में एक स्वतंत्र व्यंग्य की सृष्टि करता है और उस व्यंग्य का सीधा संक्रमण कविता के मूल व्यंग्य में सहसा नहीं होता दिखता। डाणी से लगा पल्ला होना उस व्यंग्य को सहारा देता है जो सारी दुनिया तुलती गल्ला से प्रस्फुटित होता है। सरसता में फ्राट कहकर लेखक अगली पंक्ति का भयंकर व्यंग्य सार्थक करना चाहता है। ऐसी ही व्यंग्य की मार लेखकों में लंठ के खुशनसीब होने में भी है। यह पंक्ति पंक्ति के बीच से झांकता हुआ अलग और स्वतंत्र व्यंग्य कविता की पूर्ण परिकल्पना में अलग से भी महत्वपूर्ण है। कहीं शब्दों के तान पलटे से, कहीं पंक्तियों को तोड़कर, कहीं वाद्यों या नृत्य भेदों की सूची इकट्ठा कर, कहीं सूदखोर के ब्याज दुचने को पृष्ठ संख्या 219 को लेकर, कहीं सिर्फ तुकों की ठेठ भिड़ंत से, कहीं नवाब के बाग के वर्णन से, कहीं अंग्रेजी या उर्दू फारसी के शब्दों को डालकर और कहीं लंबी चौड़ी हाँकते हुए कुछ अशिष्टता की सीमा को छूकर यह व्यंग्य उत्पन्न किया गया है। हास्य और विनोद उत्पन्न करने के लिए निराला ने यहाँ एक सर्वथा मौलिक और लगभग चौंका देने वाली पद्धति अपनाई है। कुकुरमुत्ते की डींग में चलते चलते निराला कहीं एक पूरा बंद या एक शब्द या एक उपमा ऐसी रख देते हैं जो एक तरह की निरर्थकता का आभास देती है और साथ ही विचित्र रूप से हास्य उत्पादक साबित होती है। कभी-कभी ऐसा सिर्फ शब्दों की खड़खड़ाती अकाव्यात्मक ध्वनि उत्पन्न करके भी किया गया है, कभी एक निरर्थक सी चमत्कारिक उपमा देकर, कभी टेरियर के चढ़ी आंख कानी के पीछे पीछे चलने का चित्र खड़ा करके। मुझसे मूछे मुझसे कल्ला, मेरे लल्लू मेरे लल्ला, कास्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिन जैसे फ्रायड और लिटन, काम मुझसे ही सधा है, शेर भी मुझसे गधा है, कार्नेट क्लेरियनेट ड्रम फ्लूट गिटार बजाने वाले हंसनखा बुद्धू पीटर, मैं सभी को फंसाने वाला हूँ, ट्रैप टर्की टोपी दुपलिया या किश्ती कैप, सीट पिटाई अड़गड़े में देख कर यो मर्द को। ये सारी पंक्तियाँ हर दो पंक्ति और अंतिम एक पंक्ति अलग अलग स्थलों से ली गई हैं, कहीं कल्ला और लल्ला के तुक से, कहीं अंग्रेजी शब्दों और फ्रायड तथा लीटन के संदर्भ से, कहीं शेर को गधा बनाने की डींग से, कहीं संगीत वादक बुद्धू की नामध्वनि से, कहीं ट्रैप और किश्ती कैप की चित्र सर्जना से, और कहीं हाजत के वक्त एकाएक मर्द का दिख जाने से, देहाती गंवार औरत के सिटपिटा जाने से यह उन्मुक्त हास्य उत्पन्न किया गया है। कुकुरमुत्ता की भाषिक संरचना भी सर्वथा नए प्रकार की है। लगभग सारी छायावादी शब्दावली का यहाँ निषेध है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली, उसकी माधुर्य ओज और पृष्ठ संख्या 220, सौंदर्य की जगह ठेठ, बीहड़ और पुराने मानदंड के अनुसार देशज वर्जित और अकाव्यात्मक शब्दों में पूरी कविता लिखी गई है। यह स्वयं ग्रहण की हुई एक चुनौती है जिसका निर्वाह निराला ने सफलतापूर्वक किया है। यह चुनौती या शब्द संसार से यह संघर्ष और विजय अप्रतिम है, क्योंकि यह संघर्ष दूसरों की अपेक्षा अपने ही द्वारा अर्जित आविष्कृत और सफलतम रूप में प्रयुक्त शब्द बंध के विरुद्ध है। शब्द की गेयता, उसका ध्वनि सौंदर्य, उसकी अर्थगर्भिता और लयात्मकता की जगह ठेठ, सपाट और सर्वथा अनुपयुक्त से शब्दों का अनुपम काव्यात्मक प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। इस रूप में कुकुरमुत्ता अपनी भाषिक संरचना के लिहाज से सर्वथा एक नई भाषा और नए शब्दकोश का निर्माण करता है। काव्य को उसके अभिजात संस्कारों से मुक्त कराने के अपने इस सफलतम आरंभ के कारण निराला हमारे सामने निश्चय ही एक विद्रोही और आधुनिक कवि के रूप में सामने आते हैं। भाषा को यहाँ जनता की बोली के निकटतम रखने की सफलत कोशिश झलकती है। शब्द अपने ठेठ प्रयोग में भी कितना अर्थवान होता है, इसके दर्शन यहाँ हर पंक्ति में होते हैं। कुछ कुछ शब्दों की सूची मात्र हमारे इस कथन को सिद्ध कर देगी। बाड़ी, चमन, खुशनुमा, बुलबुल, टहनियाँ, राहें, सरो, आरामगाह, बड़प्पन, मौसम, रोबोदाब, बुत्ता, खुशबू, खाद, कैपिटलिस्ट, गुलाम, जाड़ाधाम, औरत, जानिब, तवेले, टट्टू, हस्ती, पोच, हरामी, खानदानी, डंड पेलते, बालिश्त, नकली, बकरा, जनखा, पैराशूट, मथानी वीणा, कैणा, कलयुगी, लता, पाल, रफा, फलसफा, फैलसी, कास्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, लंठ, खुश नसीब, डबल, डुचुता, क्लाइमेक्स, आठों गांठ, चेला, जेवर, टार्च, पित्ती, किश्ती, कैंप, झोपड़ी, मोरियों, लंद्रानी, खादिम, हमजोली, सिट पिटाई, अड़गड़े, लजीज, चढ़ी आँख, दुम्बा, टेरियर, डिक्टेटर, पोएट, चपाती, कलिया, कबाब, चूल्हा, अर्ज, मंजूर आदि। यहाँ ध्यान देने योग्य शब्दों की ध्वनि और उनका रूप और उनकी विविधता है। तत्सम क्या लगभग तद्भव शब्द भी नहीं के बराबर हैं। उसकी जगह उर्दू शब्दों ने और तथाकथित गंवार किंतु रस और अभिव्यक्ति और अर्थ गर्भिता से पूर्ण शब्दों ने ले ली है। इसी जगह छंद और लय को भी गद्यात्मक मुहावरे में ढालने की कोशिश हर जगह लक्ष्य की जा सकती है। इस तरह भाषा की जिस सृजनात्मक किंतु उपेक्षित क्षमता का प्रयोग निराला ने कुकुरमुत्ता में किया है वह सर्वथा आधुनिक और अनुपमेय है। उसकी चित्रण क्षमता और काव्यात्मक नवीन अर्थवत्ता निराली है। जगह गंदी, रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंतरानी, बिलबिलाते कीड़े, बिखरी हड्डियाँ। पृष्ठ संख्या 221। सिल्हरों की परों की थी गड्डियाँ, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे, रहते थे नवाब के खादिम, अफ्रीका के आदमी आदिम। दरअसल कुकुरमुत्ता विषय वस्तु, शिल्प, संगठन, भाषिक संरचना, व्यंग्य और हास्य इन सभी दृष्टियों से एक सर्वथा विद्रोही, आधुनिक और महत्वपूर्ण कृति तो है ही, लेकिन उसका उससे भी बड़ा महत्व एक और कारण से है। कुकुरमुत्ता हर क्षेत्र में काव्य अभिजात से मुक्ति का संदेश देने वाला प्रथम काव्य है। यही इस कविता की उपलब्धि है और यही इस कविता में निराला का अभिप्रेत भी है। यह मुक्ति कुकुरमुत्ता के हर पहलू में है, उसके विषयग्रस्त चुनाव में, उसकी भाषिक संरचना में, उसके शब्द प्रयोग में, उसके व्यंग्य विनोद और हल्के फुल्के पन में और उसमें प्रतिपाठित साधारण की सार्थकता में। काव्य अभिजात की इसी मुक्ति के संदेश को लेकर निराला एक महान विद्रोही और विराट सामर्थ्य वाले आधुनिक कवि की भूमिका में हमारे सामने उपस्थित होते हैं।